इस सूरत हाल में जब इतनी शदीद गर्मी और इतनी तकलीफ में अरबों खरबों लोग होंगे, सात किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इज्जत देंगे कि ना सिर्फ उनको साया नसीब होगा, उनको अल्लाह की मुबारक अर्श का साया नसीब होगा। इन सात में से जो पहला शख्स है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो आदिल बादशाह, यानी जो ऐसा शख्स कि जो किसी ओहदे पे बैठा है और उसने फिर भी अदलो इंसाफ किया। और कल की मजलिस में हमने ये अर्ज किया कि आम बंदा तो ये समझेगा कि आदिल बादशाह, एक तो बादशाहत भी मिली हुई है दुनिया में और बादशाह अपना काम कर रहा है, अदल व इंसाफ कर रहा है, तो उसी पर उसको इतनी बड़ी बशारत और इतना जबरदस्त और अल्लाह वालों के साथ खड़ा रहना नसीब होगा। तो कल की मजलिस में हमने इस सवाल का जवाब दिया कि मशायख ने फरमाया है कि अदल व इंसाफ आसान चीज नहीं। इंसान जब एक घर का सरबरा होता है, कई मरतबा वो औलाद जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है उनके दरमियान भी अदल और इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक बादशाह जो करोड़ों लोगों का बादशाह है, तो करोड़ों लोगों में अदल और इंसाफ करना, और कई मरतबा ये लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, कई मरतबा ये लोग मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कई मरतबा ये लोग मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, तो उन सब में एक जैसा अदल व इंसाफ करना ये वाकई बहुत कमाल की बात है। और ये उस वक्त ही नसीब होता है जब इंसान को खूब खूब खौफ खुदा होता है। तो बादशाह हो के अदल व इंसाफ करना ये आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। कल की मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि वैसे ही ना इंसाफी अल्लाह को नहीं पसंद, ये कुरानी फैसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला तअतदू, ज्यादती ना करो, इन्नहू ला युहिब्बुल मुअतदी, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज्यादती करने वाले पसंद नहीं। कल की मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि ज्यादती चार किस्म की होती है। एक होती है इंसान ज्यादती करता है ताकत की वजह से, और ये ताकत की वजह से जिसने ज्यादती की अगर तौबा नहीं करेगा तो फंसेगा। इंसान कहता है कि मेरे पास ताकत है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो मैं अपनी मर्जी करूंगा, दूसरों के हुकूक को नहीं देखूंगा, अपनी ख्वाहिश को देखूंगा। तो एक ज्यादती की किस्म है ताकत की वजह से ज्यादती, और एक ज्यादती की किस्म होती है कि इंसान जो है वो कम इल्मी की वजह से या ला इल्मी की वजह से ज्यादती कर बैठता है। नबी ने सलात सलाम की खिदमत में एक नौजवान आया और उसने आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरे वालिद जो है वो मेरा माल जो है या मेरी चीजें मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं उनको मना भी करता हूँ मगर वो फिर भी बार बार ऐसा करते हैं। नबी अलैहि सलातु वसलाम ने जब ये शिकायत सुनी तो उन्होंने अपने एक सहाबी से फरमाया कि जाओ और उसके वालिद को बुला के ले। वो सहाबी उनके पास गए और जाके उन्होंने बताया कि जी आपके बेटे अल्लाह के नबी के पास आया, आपकी शिकायत की, तो अल्लाह के नबी आपको बुला। उनको बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा गम भी हुआ। एक तो अल्लाह के नबी के सामने इस हाल में पेशी करना, और दूसरा बेटे पे अफसोस हुआ कि उसने शिकायत क्यों। तो अरबों में अशार कहने की बहुत आदत, खास तौर पे उस जमाने में, तो जाहिर है अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि जी आओ तो जाना तो है, तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए अपने घर से निकले। पूरा रास्ता जो है वो दिमाग में अशार बनते गए, यानी जो दिल की कैफियत है वो अशार में ढलती गई। और अशार कुछ ऐसे थे कि जिनका मफहूम यूं बनता था कि ऐ मेरे बेटे, ये तूने क्या कर दिया कि तू जब से पैदा हुआ है मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, मैं तो तेरे लिए जीता, जब तक तू खाता नहीं था मैं खा नहीं सकता था, और जब तक तू सोता नहीं मैं सो नहीं सकता, और ऐ मेरे बेटे तुझे तकलीफ जब होती तो आंसू मेरे निकल आते, और आज तूने ये क्या कर दिया कि अल्लाह के महबूब के सामने मेरी शिकायत कर। तो अशआर थे जिनका मफहूम इन अल्फाज में था, और ये दिल में आते जा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम उनका इंतजार फरमा रहे थे, बेटा भी अल्लाह के नबी के सामने बैठा था, मगर जो अशआर इनके दिल में आए अल्लाह ने वो अशार अल्लाह के प्यारे महबूब के दिल में भी डाल दिए। तो जब वो वालिद पहुंचा तो आपने वालिद से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि आपने उनसे फरमाया कि यहां आते हुए जो आपके दिल में अशार बने थे वो अशार सुनाए। उस वालिद ने वो अशार सुना दिए, ऐ मेरे बेटे ये तूने क्या किया, जब से तू पैदा हुआ है मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, जब तक तू खाता नहीं था मैं खाता नहीं था, जब तक तू सोता नहीं मैं सोता नहीं, अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचती तो आंसू मेरी आंखों से निकल आते, और तूने अल्लाह के नबी के सामने मेरी शिकायत। नबी अलैहिस्सलाम उन सहाबी की ये अशार सुन भी रहे थे और आपकी मुबारक आंखों से आंसू भी जा रहे थे। तो जब उन्होंने अपने अशार मुकम्मल फरमाए तो बगैर कोई बात सुने हुए नबी अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से कहा कि ऐ नौजवान, तू और तेरी सारी जायदाद जो है वो तेरे बाप की मिल्कियत है। तो कई मरतबा इंसान से ज्यादती होती है, उस बेटे से ज्यादती हुई, मगर वो कम इल्मी में, ला इल्मी में हुई। तो जो ज्यादती ला इल्मी में होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्दी माफ फरमा देते हैं। और इसी तरह एक ज्यादती होती है जो इंसान अपनी तरफ से तो नेकी का काम कर रहा होता है मगर उसे पता ही नहीं चलता है कि वो इस दौरान ज्यादती कर बैठे। तो चार किस्म की ज्यादती, एक जो ताकत के बलबूते पे ज्यादती होती है उसके लिए तो सच्ची तौबा करना जरूरी, और एक ज्यादती है कि इंसान ला इल्मी में ज्यादती करता है, और एक ज्यादती होती है कि इंसान अच्छी नीयत की वजह से ज्यादती कर रहा है, यानी नेकी का काम कर रहा होता है उस दौरान ज्यादती हो जाती है। चुनाचे मशहूर वाकया है कि हजरत उमर रजील का दौरे खिलाफत, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह जो है नबी अलैहि सलातो सलाम के चाचा, वो किसी सफर पे गए हुए थे, उनका घर जो था वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ ही था। बारिश हुई और बारिश उनकी जब हुई तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जो छत है उस पर एक परनाला लगा हुआ था, उस परनाले से पानी जो गिरा तो वो मस्जिद में आ गया, और उसकी वजह से नमाजियों को तकलीफ हो रही थी। तो हजरत उमर ने हुक्म दिया कि ये परनाला जो है इसको निकाल दिया जाए, यानी उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से पूछा भी नहीं, और वो सफर में भी थे। हजरत उमर ने इस वजह से कि जी ये जो पानी गिरता है ये पानी मस्जिद में आ रहा है, नमाजियों को तकलीफ होती है, आपने हुक्म दिया कि ये परनाला निकाल दिया जाए। चंद दिनों बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वापस तशरीफ लाए अपने सफर से। उन्होंने देखा कि मेरे घर का जो परनाला है वो निकला हुआ है। तो उनको नाराजगी हुई और उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। उस वक्त इस्लामी अदालत कायम हो चुकी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु को काजी बना दिया था शहर का। तो बाकायदा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन काजी से भी शिकायत की कि जी मैं सफर पे गया हुआ था और पीछे अमीरुल मोमिनीन ने मेरे घर का परनाला मेरी इजाजत के बगैर निकाल दिया। तो हजरत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत लगी, उसके अंदर हजरत उमर को भी बुलाया गया और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया गया। और जो काजी थे वो हजरत उबै इब्ने काब, उन्होंने पूछा हजरत उमर से कि जी क्या आपने ये किया। हजरत उमर ने फरमाया जी बिल्कुल मैंने ये किया, मैंने हुक्म दिया कि निकाल दिया जाए परना। तो काजी जो थे उन्होंने पूछा कि जी क्यों आपने ये हुक्म दिया। कहा जी इसलिए ये हुक्म दिया कि बारिश हुई और इस पर नाले से जो पानी नीचे गिरता है वो सीधा मस्जिद में आ रहा है और मस्जिद की हिफाजत के लिए मैंने ये हुक्म दे दिया कि ये बरनाला निकाल दिया जाए। नेकी का काम था, सही काम था। हजरत उबै इब्ने काब ने हजरत अब्बास से पूछा कि जी आपने कुछ इस मामले में कहना है। उन्होंने फरमाया कि जी बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये परनाला जो है ये मैंने नहीं लगाया, ये अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपने मुबारक हाथों से लगाया। और जब अल्लाह के नबी ने ये लगाया तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं कि ये पर नाला निकाला जाए। हजरत उबै इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस केस का फैसला सुनाया कि अगर ये पर नाला अल्लाह के प्यारे महबूब ने लगाया है तो बिल्कुल इसको कोई नहीं निकाल सकता। तो इस अदालत का फैसला ये है कि अब ये परनाला वापस उसी जगह लगाया जाएगा और इस अंदाज में लगाया जाएगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु झुकेंगे और हजरत अब्बास उनकी कमर पे खड़े होके ये परनाला वापस लगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नेकी का काम करने के लिए मस्जिद की हिफाजत के लिए ये परनाला निकाला। तो कई मर्तबा इंसान नेकी का काम कर रहा होता है और अनजाने में ज्यादती हो जाती है और ये ज्यादती अल्लाह की तरफ से जल्दी माफ हो जाती है। तो चार किस्म की ज्यादतियां। पहली ज्यादती जो ताकत के बलबूते पे, उसके लिए सच्ची तौबा करनी जरूरी है। दूसरी ज्यादती इंसान करता है ला इल्मी की वजह से, ऐसी ज्यादती जल्दी माफ कर दी जाती है। तीसरी ज्यादती इंसान काम तो अच्छी नीयत से कर रहा होता है मगर उस काम के दौरान किसी से ज्यादती हो जाती है तो ऐसी ज्यादती भी अल्लाह की तरफ से जल्दी माफ हो जाती है। एक चौथी किस्म की ज्यादती है और वो कि इंसान जानबूझ के ज्यादती करता है, करना नहीं चाह रहा होता मगर वो मजबूर होता। कल की मजलिस में इंशाअल्लाह इस चौथी किस्म की ज्यादती की गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला आफियत रखे और आखिर दावा अलहमदुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا رب. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة
ورحمة
الله.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.